शिक्षक एक ऐसा शब्द जो जीवन को दिशा देते हुए सुनिश्चित लक्ष्य तक पहुंचने तक के सफर में सबसे अहम योगदान देता है। किसी भी रूप में शिक्षा का महत्व तो शाश्वत ही है, महत्व नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ शिक्षकों के स्वरूप में जरूर पिछले सालों से अब तक कई बदलाव आए हैं। एक आदर्श शिक्षक की कल्पना करें तो वो अनुशासन के साथ जीने का पाठ पढ़ाता है, तो उदारता के साथ हमें स्वीकारते हुए सुधारता भी है। किसी कुम्हार की तरह वो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार और आत्मा को आकार देता है, इसलिए उतनी ही अधिकार के साथ गलतियों पर सजा भी देता है, जो कई बार अति आवश्यक भी होती है। परंतु कुल मिलाकर शिक्षक का संपूर्ण कर्तव्य क्षेत्र ही हमारे सफल, शुभ और सुखमय जीवन हेतु होता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बदलते वक्त के अनुसार शिक्षकों ने भी अपने पढ़ाने, व्यवहार करने के तरीकों में बदलाव किया है। स्कूली शिक्षकों ने उन तरीकों को अपने कार्य का हिस्सा बनाया है जिससे विद्यार्थी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं या जिन तरीकों से बच्चे आसानी से किसी बात को समझ पाते हैं। इसके अलावा अति अनुशासन की प्रथा को कम कर आवश्यक और स्वस्थ अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे बच्चे अनुशासन के डर से झिझक कर ना रह जाएं और शिक्षक विद्यार्थी की मर्यादा को बनाए रखते हुए बेझिझक अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सके। इसका फायदा पढ़ाई और अन्य विधाओं में उनके बेहतर प्रदर्शन के रूप में भी दिखाई देता है। वर्तमान में शिक्षक बच्चों की योग्यता, विशेष योग्यता और कमियों पर नजर भी रखते हैं और उनकी कला को निखारने का प्रयास करते हैं, न कि पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी करके इतिश्री कर लेते हैं। अब वे क्लास में अनुशासन के साथ पढ़ाते हैं तो कैंटीन में विद्यार्थियों के साथ हंसते बोलते कॉफी पीते भी नजर आते हैं, जो कि एक संतुलन बनाने का प्रयास है। ये तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने थे तब कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए। उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से निश्चय ही मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तब से 5 सितंबर सारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंदमयी अभिव्यक्ति और हंसने गुदगुदाने वाली कहानियों से अपने छात्रों को मंत्रमुग्ध किया करते थे। वे छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। वे जिस विषय को पढ़ाते थे, पढ़ाने से पहले स्वयं उसका अच्छा अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली की नवीनता से सरल और रोचक बना देते थे। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो अमूल्य योगदान दिया वो अवश्य ही ना भूलने वाला रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यद्यपि वे एक जाने माने विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे, तथापि अपने जीवन के उत्तरार्ध में अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनकी मान्यता थी, यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहा करते थे कि मात्र जानकारियां देना शिक्षा नहीं है, यदि भी जानकारी का अपना महत्व है और आधुनिक युग में तकनीक की जानकारी महत्वपूर्ण भी है, तथापि व्यक्ति के बौद्धिक झुकाव और उसकी लोकतांत्रिक भावना का भी बड़ा महत्व है। ये बातें व्यक्ति को एक उत्तरदायी नागरिक बनाती हैं। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के लिए उद्देश्य है। वे कहते थे, जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उनका कहना था कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उसे अपने छात्रों का स्नेह और आदर अर्जित करना चाहिए। सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। चलिए आपको सुनाते हैं इसी तथ्य से प्रेरित एक छोटा सा नाटक।
बच्चों, आज मैं आपको दीप स्तंभ, दीप घर या प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस के बारे में बताऊंगा। समुद्र तट पर दीपों पर, चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इससे रात के समय प्रकाश निकलता है। ये किसी भी प्रणाली से प्रकाश किरण प्रसारित करती है। पुराने समय में आग जलाकर ये काम होते थे, क्योंकि वर्तमान समय में विद्युत या अन्य कई साधन हैं। इसका उद्देश्य सागर में जहाजों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। यह पथरीली तटरेखा खतरनाक चट्टानों व बंदरगाहों की सुरक्षित प्रवेश को सूचित करने के लिए होते हैं। कहते हैं सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया के निकट फारोस द्वीप में लगभग 280 वर्ष ईस्वी पूर्व संगमरमर का एक दीप स्तंभ बनाया गया था, जो 600 फुट ऊंचा था। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना गया था और यह इतना प्रसिद्ध था कि दीप स्तंभों के लिए पश्चिम में फारोस एक सामान्य नाम हो गया तथा दीप स्तंभ निर्माण विज्ञान फारोलॉजी कहलाने लगा। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रकाश स्तंभ के बारे में काफी जानकारी मिल गई, ठीक है ना?
Yes, sir.
तो ठीक है बच्चों, कल आपको प्रकाश स्तंभ पर अपने शब्दों में एक छोटा सा निबंध लिखकर आना है और साथ ही एक ड्राइंग शीट पर प्रकाश स्तंभ का फोटो बनाकर लाना है, ठीक है?
जी सर।
आ गए बेटा, और कैसा रहा आज स्कूल में?
माँ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमारे टीचर ने प्रकाश स्तंभ के बारे में बताया।
अच्छा, और क्या क्या बताया?
और पता है माँ, हमें होमवर्क में भी इसी पर निबंध लिखना है, और हाँ, प्रकाश स्तंभ का एक चित्र भी बनाना है।
ठीक है बेटा, पहले हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, फिर होमवर्क करना।
माँ, आप मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि टीचर ने कहा है निबंध छोटा सा पर अपने शब्दों में लिखना है।
हाँ हाँ, जरूर बेटा। वैसे आज तो शिक्षक दिवस था ना, कैसे सेलिब्रेट किया तुम लोगों ने?
आज बच्चों ने टीचर्स के ऊपर अपने विचार प्रकट किए, और कुछ बच्चे तो फूल और उपहार भी लाए थे टीचर्स के लिए।
अच्छा, आप तो फूल लेकर गए थे ना अपने टीचर्स के लिए, आपने किसको दिए फूल?
मैंने अपने सारे सब्जेक्ट के टीचर्स को एक एक फूल दिया।
अच्छा, तो कोई आपका फेवरेट टीचर नहीं है?
है ना, हमारे जो इतिहास के सर है ना, वो मुझे पसंद है। उनका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत जल्दी समझ में आता है। उन्होंने ही तो प्रकाश स्तंभ का चित्र बनाने के लिए कहा है। पता है माँ, जब मैंने उनसे पूछा कि टीचर्स डे पर आपको क्या गिफ्ट करूं, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे स्टूडेंट बनो, यही एक टीचर के लिए अच्छा गिफ्ट है।
हाँ, बहुत सही बात कही तुम्हारे सर ने। पता है बेटा, एक जन्म बच्चे को माता पिता से मिलता है, तो दूसरा टीचर या शिक्षक के द्वारा, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही बच्चों के जीवन का सही संचालन होता है। कोई भी बच्चा, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, सही शिक्षक के बिना उसका जीवन संवर नहीं सकता। और एक अच्छा शिक्षक ही अपने शिष्यों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। शिक्षक रोशनी का वो स्रोत है जहां से ज्ञान के झरने बहते हैं।
अरे वाह माँ, आपकी बातों से तो मुझे एक अच्छा आइडिया आया है।
कैसा आइडिया सूरज?
माँ, मैं ना प्रकाश स्तंभ के बदले पर अपने टीचर का फोटो बनाऊंगा।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
हाँ तो बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? प्रकाश स्तंभ के बारे में, जो जहाजों को सही रास्ता दिखाने का काम करता है, और आप सबको होमवर्क भी दिया था, तो सब बच्चे करके लाए हैं ना?
Yes, sir.
तो ठीक है, बारी बारी से अपना होमवर्क दिखाओ। चलो दीपक, पहले तुम दिखाओ। हाँ गुड, अच्छा है। निशा, हाँ आपने भी अच्छा बनाया है। सूरज, आप दिखाओ। अरे ये क्या है, ये तो प्रकाश स्तंभ का चित्र नहीं है। सूरज, ये तो आपने एक आदमी का चित्र बनाया है।
सर, ये मैंने आपका चित्र बनाया है।
अरे, पर आपने मेरा चित्र क्यों बनाया बेटा? आपको तो प्रकाश स्तंभ का चित्र बनाना था ना?
जी सर, पर मम्मी कहती है टीचर भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो बच्चों को जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपकी मम्मी ने।
बस सर, इसीलिए मैंने आपका चित्र बनाया। मेरे जीवन का प्रकाश स्तंभ तो आप ही हैं।
श्रोताओं, आपको पता है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, उसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रोताओ, हमारे देश में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें तराशने और मूल्य आधारित शिक्षा के प्रकाश से अवलोकित करने की। आज भी हमारे समाज को कबीर दास जी द्वारा बताए हुए शिक्षक की आवश्यकता है। उन्होंने एक शिक्षक के बारे में कहा, गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अर्थात शिक्षक तो कुम्हार के समान है जो अपने शिष्य को ऐसे तराशता है जिससे उसके मन में कोई भी बुराई न रह जाए, और इस दौरान शिक्षक का मर्म स्पर्शी व्यवहार उसे भावना तक बल भी देता है, जिस वजह से छात्र का कोमल मन आहत नहीं होता। कबीरदास जी ने शिक्षक को कुम्हार कहकर ये संदेश दिया कि बालक रूपी छात्र तो मिट्टी का एक लोथा है, उसे किस रूप में ढालना है ये हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है। वास्तव में आज समाज को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम का शिक्षण देने के साथ जीवन को भी संवारने वाला शिक्षण अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे ही आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने न केवल व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय दर्शन का मर्म समझाया अपितु अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी शिक्षा दी। 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना इस बात को प्रमाणित करता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक हों तो विद्यार्थी उनका अनुसरण करना अपना धर्म समझता है। जी हाँ श्रोताओं, हम अपने समस्त शिक्षकों का श्रद्धा पूर्वक अभिनंदन और वंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि शिक्षकों के सम्मान हेतु समर्पित शिक्षक दिवस महज एक पर्व बनकर न रह जाए बल्कि शिक्षकों के आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन का भी पर्व हो, जिसकी छाया में भारत का स्वर्णिम भविष्य निखर कर दुनिया में जगमगाए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षकों के समर्पण से भारत शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु बनकर पूरे विश्व का कल्याण करे।
तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।